कल वाणी चल रही थी 11 अक्टूबर 1966 की दूसरे पेज के मध्याद्ध में वाणी चल रही थी। बात चल रही थी गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु इसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। किसने डाल दिया है? दुनिया वालों ने तो डाल ही दिया है, लेकिन ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में भी जो हमारी गीता है, ज्ञान का गीत है, भगवान का गाया हुआ है, उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। कहा? आदि में डाल दिया है, मध्य में डाला है या अंत में? आदि में डाल दिया है। क्या डाल दिया है? पिताश्री शिव बाबा याद। तो पिताश्री पिता के बाद में श्री लगाया हुआ है, इसका मतलब ब्रह्मा कुमारियां जिसे अपना बाप कहती है ब्रह्मा को, वो बाद में श्री अर्थात श्रेष्ठ बनने वाला है। वो पिताश्री शिव बाबा हो गया और मानती भी है कि गीता ज्ञान देने वाला साकार में यदि कोई भगवान है सृष्टि पर तो दादा लेखराज ब्रह्मा। वही गीता ज्ञान दाता है साकार में, क्योंकि गीता ज्ञान देगा तो जरूर मुख से देगा, मुख तो चाहिए। तो वो मुकर्रर रथ ब्रह्मा को मान लिया। अब कृष्ण तो देहधारी, देहधारी का मतलब है निराकारी नहीं है। जैसे बाप होता है निराकार, मां होती है साकार, बीज को निराकार कहा जाता है। बीज साकार धरणी में डाला जाता है तो वो निराकार बीज जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब अपनी अपनी धारणा रूपी धर्म खंड के बीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप के बीज हो, चाहे अरब धर्मखंड इस्लाम धर्म के बीज हो, चाहे गुरु नानक जैसे बीज हो, उनकी बीज रूप स्टेज होती है, ऑटोमेटिक बीज रूप स्टेज बन जाती है। निशानी क्या है? उनके चित्रों को ध्यान से देखो। जैसे गीता में भगवान ने कहा है हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं, निराकार बीज हूं, माना निराकारी स्टेज वाला हूं, ऐसे ही वो धर्म पिताएं भी चेहरे से देखने से पता चलता है निराकारी स्टेज वाले, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, ऐसे ही उन पिताओं का भी पिता, बापों का भी बाप, जिसे सर्वधर्म पिताएं मानते हैं, लेकिन वो तो निराकार रूप में मानते हैं, उनको तो वो साकार रूप में मिलता ही नहीं, जानते ही नहीं। अगर मिला होता तो वो भी स्वर्ग में आ जाते। गीता है ही देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र, देवता धर्म की स्थापना होती है। तो देवताएं जो सृष्टि पर साकार में थे, उन देवताओं को जन्म देने वाला जो बीज है वो बीज कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को शंकर के साथ मिलाई दिए है। क्यों मिलाई दिए है? शिव को विष्णु के साथ क्यों नहीं मिलाया? ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं मिलाया? या इब्राहिम बुद्ध के साथ या क्राइस्ट के साथ क्यों नहीं मिलाया? 33 करोड़ देवताओं में से कोई के भी साथ क्यों नहीं मिलाया? इसलिए नहीं मिलाया कि वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले जरूर किसी एक को आप समान निराकारी स्टेज वाला बनाता होगा। जो ओटे स्वर्ग, जो पहले नंबर में निराकारी बीज रूप स्टेज 100% धारण करता है, उसी के साथ उसका नाम ऐड कर दिया जाता है। तो शिव शंकर को मिलाकर के एक किया गया है। क्यों? क्योंकि शिव ने शंकर में प्रवेश किया मुकरण रूप से, इसलिए शिव शंकर एक हुआ। तो जरूरी निराकारी स्टेज वाला है। वो मनुष्य सृष्टि का पिता है, बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हो, सर्वधर्मों की आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। वो निराकारी स्टेज वाला तो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि साकार रूप धारण नहीं करता। अगर साकार रूप धारण न किया होता तो ये चित्र दुनिया में कहां से आ गए? चित्र तो चरित्र की यादगार होती है। चरित्र शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बजाए जाते हैं। उन चरित्रों का ही गायन होता है, महिमा होती है, कीर्तन होता है। तो वो गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु उस साकार विग्रह में प्रवेश करके आता है, जिसकी यादगार में मंदिरों में दोनों प्रकार के चित्र मिलते हैं। पुरानी पुरानी जो अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी की गुफाएं हैं, उनमें वो चित्र चित्रित किए गए थे 2000 साल पहले। वो निराकारी स्टेज धारण करके आता है, इसलिए निराकार। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वो साकारी स्टेज वाला है। उनका एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज को झलकाता हो। ब्रह्मा बाबा के सैकड़ों चित्र खींचे गए, लेकिन उन आंखों से, उन उस चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो मां का पार्ट था। माता साकारी होती है और बाप निराकारी होता है। तो वो निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता का भगवान है, उस मुख से ही गीता ज्ञान अमृत निकलता है। वो मुकर्रर रथ है। ब्रह्मा के मुख से तो वेद वाणी निकलती, वो वेद व्याणी जब तक उसका मनन चिंतन मंथन करके व्याख्या न निकले, स्पष्टीकरण न निकले, उसका विस्तार न निकले, तब तक कोई को समझ में नहीं आती। उसी यादगार में भारतवर्ष में गीता की अनेकों टीकाएं लिखी गई। शंकराचार्य गीता, माध्वाचार्य गीता, तिलक गीता, गांधी गीता, ढेर सारी गीता है, लेकिन असली व्याख्या कौन कर सकता है? कहते हैं कि कभी समझे या समझे रवि। उन कवियों ने जिन्होंने वो कविता लिखी है शास्त्रों में, वो उस कविता का सही अर्थ जान सकते हैं, जानते थे। जो हजारों वर्ष पहले उस कविता को लिख करके गए, चाहे वो रामायण की हो, वाल्मीकि रामायण, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो भागवत हो, और चाहे वो गीता हो, वो तो चले गए। उनके जाने के बाद जिन परवर्ती व्याख्याकारों ने उनकी व्याख्या की, वो सब मनुष्य गुरु थे। पतित षष्ठी में पतित चोला धारण करते गए, बुद्धि विकारी होती चली गई। तो दुनिया जैसे जैसे नीचे गिरती गई, मनुष्य की मेंटलिटी नीचे गिरते जाने के कारण वो व्याख्याएं भी विकृत होती चली गई। सही व्याख्या किसी की बुद्धि में नहीं आई। कलयुग के अंत में आकर के सैकड़ों टीकाएं हो जाती हैं गीता की, शास्त्रों के अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। अंत में आखिरी भगवान को ही आना पड़ता है, और वो शास्त्र जो मनुष्यों ने लिखे थे, जो आज में सही अर्थ वाले थे फिर भी, और अभी टीकाएं होते होते सब विकृत हो गए, उनका सार आकर के बताता है, डायरेक्ट मुख से सुनाता है। वो है ब्रह्मा मुख। दादा लेखराज के मुख से जो वाणी चलाई गई वो वेद वाणी चलाई गई। विद माना जानना, जानकारी, वेद। लेकिन उन वेदों की ऋचाओं का तालमेल तब ही बैठता है जब उनकी व्याख्या हो, तब वो कहा जाता है गीता ज्ञान अमृत। अमृत माना मनन चिंतन मंथन करने वाली चीज। वो मनन चिंतन मंथन जो है वो टीचर के रूप में स्वयं परमात्मा ही आकर के करता है। जो मां के रूप में ज्ञान देता है वेदों का, वही टीचर के रूप में आकर के उन वेद की ऋचाओं को क्लियर भी करता है। तब बनती है गीता। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि महाभारत का अंश है गीता। पहले महाभारत हुआ या गीता हुई? पहले महाभारी महाभारत युद्ध। बाबा कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। अभी कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, यादव भी हैं। कहां है? दुनिया में। दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही तीनों प्रकार की सेनाएं मौजूद हैं, और उनका युद्ध बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। कब विकराल रूप धारण कर ले कोई को पता नहीं। ताना बाना बुना जा चुका है। ऐसे युद्ध के बीच में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। स्वर्ग की नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है, इसलिए बोला है गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत स्वर्ग के गेट खोलता है। दुनिया में भी लड़ाई के बगैर किसी को राजाई तो मिलती नहीं है। भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। ये सत्य असत्य का युद्ध वाइब्रेशन के द्वारा भी होता है। वाइब्रेशन का टकराव चलता है। यादवों की बुद्धि में अपनी सत्यता चलती है, ये सत्य है ये असत्य। कौरवों की बुद्धि में अपने तरीके की सत्यता असत्यता चलती है। पांडव वही बात कहते हैं जो भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी, भगवान जो कर्म कराना चाहते हैं वही कर्म करते हैं। यहां तक कि संकल्प भी जो बाप चलाना चाहता है या बच्चों से चलवाना चाहता है, संकल्प तक अपने को कंट्रोल करते हैं। जिसको कहते हैं मन मना भव। कौन सा मंत्र देते हैं? मेरे मन में समा जा, मैं तेरे से जो बुलवाना चाहता हूं वो ही बोल, और कोई बात मिक्स करके ना बोल। मैं तेरे से जो सत संकल्प कराना चाहता हूं ज्ञान युक्त, वही संकल्प कर, दूसरा कोई संकल्प न कर। जो कर्म है और जैसे कर्म मैं तेरे से कराना चाहता हूं वैसे ही कर्म कर। तो ऐसे जो पांडव होते हैं वो संख्या में बहुत थोड़े होते। भगवान की वाणी को ज्यों का त्यों फॉलो करने वाले, लेकिन क्योंकि उनके उनकी पाला में भगवान गिरता है इसलिए वो विजयी होते हैं। कौरवों यादवों की पाला में दुनिया की जितनी समृद्धि है वो सारी गिरती है, धन बल भी गिरता है, जन बल भी गिरता है, तन बल भी गिरता है, और दुनियावी तरीके का जो मनोबल है वो भी गिरता है। पांडवों के हाथ में सिर्फ परमात्मा की याद बचती है। उस याद की शक्ति से और परमात्मा जो डायरेक्शन देता है जिसे श्रेष्ठ मत कहते हैं, वो श्रेष्ठ मत उनकी हाथ में बुद्ध रूपी हाथ में रहती है, जिससे वो लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्य असत्य का युद्ध अभी चल रहा है, उसमें फिर परीक्षा भी हो जाती है। परीक्षा में तो कोई छोटा मोटा ग्रुप ऐसा निकलता है जो पास विदानर होता है, कोई ग्रुप फर्स्ट क्लास पास होता है, कोई सेकंड क्लास में पास होता है, कोई थर्ड क्लास में भी पास होते हैं। फोर्थ क्लास पास होने वाली प्रजा भी निकलती है। तो जो जो पासिंग मार्क्स में आते हैं वो सब स्वर्ग में जाने योग्य बन जाते हैं। इसलिए बताया कि पहले जन्म की जो प्रजा होगी वो प्रजा की भी कोई विशेष सिद्ध होगी। वो प्रजा इतनी गुणवान होगी, इतनी बुद्धिशाली होगी, जो और जन्मों में आने वाली आत्माओं के पास वो बुद्धि नहीं होगी। वो बुद्धि की दात उनके पास होगी। लेकिन ये जो प्राप्ति होती है ऊंचते ऊंच, वो ऊंचते ऊंच बाप को पहचानने के कारण होती है। जो गीतापति भगवान है उसकी असली पहचान होने के कारण होती है। कोई तो कृष्ण में ही लटक जाते हैं। अब कृष्ण तो सत्ययुग का पहला प्रिंस, वो तो अपने मां बाप से प्राप्ति करता है, भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करता है। भगवान से जो डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं वो पहले जन्म की प्रजा और राजा बनते हैं, राज परिवार में आते हैं, उनमें विशेष एक शिफ्ट है जो दुनिया की और किसी आत्माओं में नहीं है, कोई धर्म की प्रजा में नहीं है। कौन सी? गीता के भगवान बाप के सही स्वरूप को पहचानने की शिफ्ट। दुनिया वालों ने भी इस राज को पहचाना है, ऐसे नहीं दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, सिर्फ बाबा ने आकर के बताया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है। नहीं, अभी से 200-300 वर्ष के अंदर यूरोप के विद्वानों ने पहले ही लिख रखा है शास्त्रों में कि गीता कोई निराकारवादी रचना थी, बाद में इसमें साकार कृष्ण का नाम डाला गया, लेकिन वो गिने चुने विद्वान थे जिनकी बुद्धि में ये बात आई। ऐसे ही यहां ब्राह्मणों की दुनिया में थोड़ी सी गिनी चुनी आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि में ये बात शुरू शुरुआत में बैठती है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है, उसको तो थोड़ी सी आत्माओं ने, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है, गीता का भगवान मान लिया है। भले दुनिया में ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं वो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन वो गीता का भगवान जब कृष्ण नहीं है ये कहते हैं तो बता देते हैं सत्ययुग का कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं है। अब वहां गीता ज्ञान कोई सुनाया जाएगा? वहां तो सुनाए जाने की बात ही नहीं है, ये तो वर्तमान समय की बात है, संगम युग की बात है कि संगम युग में कृष्ण की सोल जिसमें परमात्मा बाप प्रवेश करके माता का पार्ट बजाते हैं वो गीता माता तो है लेकिन गीता पति भगवान नहीं। तो गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज गलती से समझ लिया है, वास्तव में स्पिरिट कहते हैं आत्मा को। स्पिरिचुअल नॉलेज तो आत्मा का बाप ही दे सकता है, कोई भी देहधारी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ही नहीं सकता, मनुष्य में ये नॉलेज हो ही नहीं सकती। कभी कोई डिबेट करते हैं तो बोलो तुम्हारा है भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के पास जो भी ज्ञान है वो सब है अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। असली ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान सागर बाप के पास है, वो हमें खुद नॉलेज देते हैं। क्या कि वो शास्त्र को ही रिफर करके नहीं सुनाते, वो जो कुछ भी सुनाते हैं वो डायरेक्ट हमको सुनाते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई शास्त्र है या नहीं है? नहीं है,
है?
जो भी कागज के पत्ते हो, जो भी ग्रंथित किए जाए, जो भी किताबें बनाई जाए मनुष्यों के द्वारा, वो सब क्या हुए?
शास्त्र
ही हुए। तो वो शास्त्र भगवान बैठ करके पढ़ेगा क्या?
नहीं,
नहीं पड़ेगा। तो ये शास्त्र नहीं, कागज का पत्ता नहीं है, कागज का पत्ता तो है, ये शास्त्र तो है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का, लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने वाला अलग आत्मा है। क्या पढ़ने वाला आत्मा फर्स्ट क्लास अलग है, और इस शास्त्र को जो सार है इसका, इसका जो असली तत्व है, माने जो इसकी असली व्याख्या है, वो व्याख्या बनाने बताने वाला सुप्रीम सोल परमात्मा शिव है। शिव की सोल, कृष्ण की सोल, और जिस मुकर्रर रथ में वो आता है, मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वो सोल कौन? राम की सोल, वो अलग। एक ही शरीर व्यक्त होने वाला व्यक्ति एक ही है, लेकिन आत्माएं उसमें तीन है। एक है मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, राम बाप जिसे कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम सोल शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न करता है, और दूसरी है ज्ञान चंद्रमा के रूप में उस मस्तक में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और कृष्ण की सोल कहो। तो बाबा मुरली में समझाते हैं कि उन भक्तों को अगर तुम बताओगे कि कृष्ण की सोल इस समय बैठ करके पढ़ाई पढ़ रही है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर के कुछ भी बोलने लग पड़ेंगे, कहेंगे है हमारी मुरली बैठ करके पढ़ते हैं, भगवान आता है तो भगवान अपनी मुरली बैठ करके क्यों नहीं पढ़ता? अरे पढ़ने वाली सोल अलग है, उसका अर्थ बताने वाली सोल, वो सुप्रीम सोल अलग है, और जिस तन के द्वारा वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके सारा ही संगमयुग का कार्य असली रूप में संपन्न करता है, वो तनधारी अलग है, क्योंकि सृष्टि का सारा कार्य अपनी संपन्न अवस्था में संपन्न होता है योग बल से। बाबा कहते हैं जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? दुनिया के जो जो काम और धर्म पिताओं के द्वारा नहीं हो पाए, क्या नहीं हो पाया? उनके द्वारा अपने अपने धर्मों की स्थापना तो हुई, अपनी अपनी धारणाएं तो स्थापन की, लेकिन पुरानेपन का विनाश किसी ने नहीं किया। जब तक पुराने धर्मों का विनाश नहीं होता, पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं होता, पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं होता, तब तक नई धारणा स्थापन करने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि पुरानापन नई बातों में मिक्स होता जाता है। तो ये बड़ा कार्य जो है वो बड़े देवता के द्वारा कराया जाता है। इसलिए गीता में ये बात आई है कि मैं जैसे श्रेष्ठ आत्माओं का संवर्धन करता हूं, उसी तरह से जो भ्रष्ट आत्माएं हैं, भ्रष्ट कर्म करने वाली हैं, दुष्कर्म करने वाली हैं, उनका विनाश भी कराता हूं, उनके दुष्कर्मों का हमेशा के लिए 2500 साल के लिए विनाश कर देता हूं, सब धर्मों का विनाश, सारे धर्म इस सृष्टि पर अधर्म हो गए, धर्म के नाम पर दतिंग हो गए, चाहे वो देवी देवता सनातन धर्म ही क्यों न हो, वो तो पुराने जर्जरी भूत मान्यताओं वाले धर्म को मैं आकर के सात्विक बनाता हूं। खुद ही आकर के नॉलेज देते हैं, ये नॉलेज भी और कोई नहीं दे सकता। भगवान वाच्य है और कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान वाच्य लिखा हो। सिर्फ एक गीता शास्त्र ही है जिसमें लिखा हुआ भगवान वाच्य, भगवान ने आकर के बोला। तो कागज के पत्ते आकर के थोड़ी बोले न लिखे, वो तो आता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट आकर के मुख से बोलता है, चाहे वो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाता है तब डायरेक्ट बोलता है, और चाहे वो टीचर के रूप में आता है और व्याख्या करता है, व्याख्या करता है तो भी डायरेक्ट बोलता है। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज जो होते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक होती है, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है, सूरदास कबीरदास तुलसीदास के चौपाइयां दोहे कवित्त पढ़ता जाता है स्टूडेंट, और टीचर उसकी व्याख्या करता जाता है। तो पुस्तक पढ़ने का कार्य स्टूडेंट का है और उसकी व्याख्या करने का कार्य टीचर का है। वो दुनियावी टीचर तो फिर भी अपने हाथों में किताब लेते हैं रिफर करने के लिए, ये सुप्रीम सोयल को कोई भी किताब अपने हाथ में लेने की बात नहीं है। वो तो जो कुछ भी नई बात सुनाता है वो किताब में लिखी हुई नहीं होती, वो तो उसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी भरी हुई है। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है, तो शास्त्रों की भी ज्ञाता है, शास्त्रों की भी वो अथॉरिटी है। मनुष्यों के अंदर क्या क्या बात है वो भी अंतर्यामी है, लेकिन वो कौन है? निराकार सुप्रीम सोल शिव की आत्मा है, रामकृष्ण की आत्मा है, कोई अंतर्यामी नहीं होती है। वो बहिर्यामी हो सकती है, बहिर्यामी का मतलब बाहर से कोई कर्म करता है, किसी दृष्टि से देखता है, बोलता है, तो उसकी बोल चाल हलन चलन चाल चलन के आधार पर उसके अंदर वास्तव में क्या भाव भरा हुआ है उस भाव के भाव को भी जान लेता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो अंतर्यामी होते। कौन? राम और कृष्ण। तो भगवान वाच्य जो है वो सिर्फ गीता की बात है, जो गीत भगवान ने ज्ञान का गाया, और कोई शास्त्रों में भगवान वाच्य नहीं होता। गीता एक ही है जिसमें भगवान वाच्य, बाइबल में, कुरान में, बौद्धियों के धम्मपद में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में, किसने वाच किया? जो उन उन ग्रंथों में दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो उवाच किसने किया? उन्हीं उन्हीं धर्म ग्रंथों के गुरु जो बोलने वाले थे आदि में धर्म पिता, उन्होंने उवाच किया। वो अपने को भगवान किसी ने नहीं कहा, क्राइस्ट ने अपने को भगवान नहीं कहा, गुरु नानक ने अपने को भगवान नहीं कहा। उनसे जब कोई भी पूछा जाता था तो सदगुरु भगवान के बारे में ऊपर इशारा करते थे, एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्ति ऐसे कहते। तो और कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं है जिनमें भगवान वाच्य, सिर्फ एक गीता ही है, यही ज्ञान का गीत है जिसमें भगवान वाच्य कहा जाता है। इनसे ही आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सत्यु की स्थापना सिवाय बाप के और कोई कर ही नहीं सकता। क्या कहा? है
बाप के सिवाय सत्यु की स्थापना कोई नहीं।
और दीदी दादी दादा ये किस काम की चीज है? ये सत्यु की स्थापना नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे। आते नहीं तो क्या करेंगे?
मुरली में तो बाबा ने यही बोला, क्या कि जो सत्य युग है उसकी स्थापना एक सत्य बाप ही कर सकता है, बाकी दुनिया में सब झूठे हैं, झूठ खंड की औलाद है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाते पीते हैं वो भी झूठ, धंधा करते हैं वो भी झूठ। तो वो सत्ययुग की स्थापना कैसे करेंगे? सत्ययुग की स्थापना के लिए तो खाना भी सच्चा होना चाहिए, धंधा भी सच्चा होना चाहिए, देखना भी सच्चा होना चाहिए और सुनना भी सच्चा होना चाहिए, और जो कर्म किए जाए वो कर्म भी सच्चे होने चाहिए। असत्य से सत्य की स्थापना नहीं हो सकती, कीचड़ से सद्गुणों की स्थापना नहीं हो सकती कि हम कीचड़ उछालते जाए और हमारे अंदर सद्गुण आते जाए। हम दूसरों की ग्लानी करेंगे तो हमारे अंदर सद्गुण आएंगे या दुर्गुण आएंगे? दुर्गुण ही आएंगे। तो सत्य इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। कहते हैं हम सत्संग करने जाते हैं, कह देते हैं, लेकिन दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं तो किसका संग करने जाते हैं? गुरु जी का संग करने जाते हैं। गुरु जी सत्य है, अगर सत्य हो 2500 साल से गुरुओं की दुनिया चलती चली आ रही तो सत्यखंड की स्थापना होनी चाहिए थी, बजाय सच्चे खंड बनने के क्या बनता जा रहा है दुनिया? झूठ खंड बनता जा रहा है। तो सच्चे खंड कहो, सत्य युग कहो, उसकी स्थापना के लिए एक सच्चा बाप जो है उसी को आना होगा, एक सच्चा, बाकी सब झूठे। सदगुरु निराकार से सदगति, और ढेर के ढेर देहधारी धर्म गुरुओं से दुर्गति। अभी सचखंड स्थापन हो रहा है, एकदम चुटकी मारते नहीं स्थापन हो जाएगा, पहले छोटा संगठन तैयार होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, जैसे झाड़ होता है, झाड़ में एकदम पूरा झाड़ थोड़ी निकल आता है कि फल भी निकल आएंगे फूल भी निकल आएंगे, नहीं। तो ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन अभी लगाया जा रहा है, फाउंडेशन लगाया जाता है तो कलम काटी जाती है, क्या कलम काटी जाती है? पुराना पौधा और नया पौधा दोनों को तोड़ दिया जाता है। तो ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया पुराना पौधा कौन सा है और नया पौधा कौन सा है?
पुराना भी के
पुराना पौधा भी है और नया पौधा भी है, नया झाड़ भी है पुराना झाड़ भी है, दोनों की सैंपलिंग लग रही है। ये सैंपलिंग जब तैयार हो जाती है तो नए फलफूल पैदा होते हैं। अब हाइब्रिड तैयार हो रहा है। दूसरा मिसाल भी दे सकते हैं, कोई मकान डाला जाता है उसमें जब लेंटर तैयार करते हैं तो एक टेम्परेरी छत डालते हैं, बाद में टेम्परेरी छत के ऊपर पक्की छत डालते हैं। जब पक्की छत पानी लगते लगते ज्ञान जल सोखते सोखते पक्की हो जाती है तब क्या करते हैं? है? जो टेम्परेरी छत डाली गई है वो निकाल दी जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम इस दुनिया में बेसिक नॉलेज वो आधार बनाई गई है, आधार मूर्त जड़े और लैंटर पड़ चुका है। अब तो ये ज्ञान की बेल फैल गई, कहा करे कोई, अब कुछ हो नहीं सकता। कोई कितना भी विरोध करे, उस विरोध का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो जो टेम्परेरी छत है अब निकलने वाली है, उसके लिए मुरली में पहले ही इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? तुम बच्चे आगे चल करके लिखेंगे स्पिरिचुअल गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, क्या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वो तो लिखना शुरू कर दिया, लिखना तो शुरू कर दिया। वो तो ऐसे ही बात हो गई जैसे धर्म पिताओं ने अपना धर्म आकर के स्थापन कर दिया। तो धर्म पिताओं के स्वर्ग धर्म स्थापन करने से क्या जन्नत या पैराडाइज स्थापन हो गया? नहीं, वो तो तब ही हो सकता है जब पुरानेपन का विनाश कर दिए थे। तो ये जो पुरानी छत है जिसके ऊपर नई छत डाली गई है, वो पुराना जब तक हटाई नहीं जाएगी, माना ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय का हो खात्मा जब तक नहीं होगा, तब तक सतयुग संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मुरली में बोल दिया आगे चल करके सब सेंटर्स में लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय,
सब सरे पे नाम
सब सेंटरों में लिखना पड़ेगा। यह गीता मंदिर, सच्ची गीता पाठशाला, यादगार भी भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों की चल रही है या गीता मंदिरों की यादगार बनी हुई है? गांव गांव में शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए,
गीता पाठशाला,
जरूर गीता पाठशाला में आकर के गीता के भगवान ने आकर के ज्ञान सुना है, वो अभी भी सुना रहा है। गीता का भगवान प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर अपना कार्य कर रहा है। जानने वाले जान रहे हैं और न जानने वाले अभी भी गीता का भगवान कृष्ण को माने बैठे। वो अंत तक जब तक विनाश नहीं होगा तब तक यही ढोल पीटते रहेंगे। अभी बाप कहते हैं बच्चे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले बाप को पहचान करके सत्य सनातन धर्म में अपना 84 जन्म का वर्षा ले लो। ऑलराउंड पार्ट धारी बन जाओ। जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होते हैं वो सब हीरो पार्ट धारी होते हैं। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। 9 लाख सितारे हैं, वो 9 लाख सितारों में सब में अपनी अपनी दुनिया है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, इन सितारों में अपनी अपनी दुनिया है। वो जड़ सितारों में तो कोई दुनिया होती नहीं है, ये तो एक पृथ्वी है जिसमें दुनिया बसी हुई है। लेकिन ये चैतन्य सितारे हैं जिनमें अपना अपना संगठन उदा हुआ है, वो संगठन माना दुनिया। तो सतयुग की स्थापना सिवाय सत्य बाप के और कोई कर नहीं सकता। इसमें बड़ी अच्छी समझ चाहिए। क्या ये बात समझने के लिए कि सिवाय सत्यखंड की स्थापना सिवाय सत्य बाप के और कोई दुनिया में मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कितना भी ढोल पीटे। बाप कहते त्रिमूर्ति शिव के सिवाय और कोई भी नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश और पालना नहीं करा सकता। भले मनुष्य गुरु कितने भी पोस्टर छपाए, पोस्टर में छपा करके ऊपर दिखाई देते हैं शिव 32 किरणों वाला, और नीचे दिखाते हैं कहीं दीदी दादी दादाओं का चित्र रख देते हैं, कहीं रमेश भाई का चित्र रख देंगे ब्रह्मा की जगह
रखा है ना,
कहीं विष्णु की जगह किसी का चित्र छपाए देंगे, और शंकर की जगह कुमार का दादी को रख देंगे रख देते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें चल रही है अपने को त्रिमूर्ति सेवा साबित करने की। लेकिन त्रिमूर्ति सेवा मनुष्य गुरुओं के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता। मनुष्य मन को उपयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? मनुष्य, मनु की औलाद, मनु माने ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में एक मनुआ है मन, एक बुद्धि है, तीसरा नेत्र शंकर, एक संस्कार शक्ति है विष्णु। तो जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, मन की औलाद बनते हैं, वो मनुष्य कहे जाते हैं। कौन बनते हैं? ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले वो तो पुष्करणी ब्राह्मण बनते हैं। धक्का देकर के उनको चलाया जाता है, तब कहीं सर्विस की फील्ड में निकलते हैं। उनकी अंदरूनी भाषणा भाव नहीं है कि वो सेवा करें, जबरन उनसे जैसे सेवा कराई जा रही है तो कर रहे हैं, बल्कि सेवा के नाम पर और ही डिससर्विस करते हैं। मन को जो चलाने वाले हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं, और दुनियावी तरीके से चलाने वाले नहीं, जैसे श्रीमत चलाना चाहती है वैसे मन को चलाने वाले। जो बाबा कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा, माने मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वही तेरे मन के अंदर संकल्प चले। संकल्प मात्र भी कोई भी विरोधाभास न हो उसको कहेंगे मनुष्य। तो वो मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं वही सच्चखंड की स्थापना में सहयोगी बनती है। तो इसमें बड़ी अच्छी समझ चाहिए। उनका नाम है, उनका चित्र है, किनका? जो सच्चखंड की स्थापना करते हैं उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, माना चित्र भी है। ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप नहीं है। नाम होता है तो रूप भी होता है, रूप होता है तो उसको रूप को धारण करने वाले स्थान भी होता है। तो नाम रूप धाम सब चाहिए। इसलिए यहां समझाने के बाद लिखाई लिया जाता है कि निश्चय पत्र लिखो, तुमने गीता के भगवान को पहचाना है। कौन है गीता का भगवान? ओपिनियन लिखवाओ, बड़े बड़े लोगों से ओपिनियन लिखवाओ, तब तुम्हारी जीत होगी। बच्चे ओपिनियन तो लिखवाते नहीं कि गीता का भगवान कौन है, जो असली काम है वो छोड़ देते हैं। जब तक इस बात में जीत नहीं हुई है कि गीता का भगवान कौन है, तब तक सच्चखंड की स्थापना नहीं हो सकती। तो सच्चखंड की स्थापना करने वाले का नाम भी है, रूप भी है, स्थान भी है, एड्रेस भी है। आत्मा का तो नाम नहीं होता। आत्मा का कोई नाम होता है? कहते हैं, हे आत्मा इधर आओ, कोई नहीं कहता। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसका नाम पड़ता है, उसको कहते हैं है? नाम रूपधारी। आत्मा को जब शरीर मिलता है तो उसका नाम पड़ता है। शिव तो है ही निराकार, परम धाम में रहने वाली परमात्मा। तुम भी आत्मा हो, परंतु तो सब आत्माओं का बाप भी होगा ना। चीटियां हैं तो चीटियों का बाप भी होगा, हाथी है तो हाथी का हाथी जैसा नाम रूपधारी बाप भी होगा। आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी कोई ज्योति बिंदु जरूर होगा। उनको सुप्रीम बाबा कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है क्या? किसकी पूजा होती है? अरे निराकार माने बिंदी की पूजा होती है। बिंदी को अगर मंदिर में रख दिया जाए तो वो तो जल चढ़ाते ही लुढ़क जाएगी, पता नहीं चलेगा। निराकार की पूजा माना निराकारी स्टेज धारण करने वाले की पूजा। वो निराकार ज्योति बिंदु जिस स्वरूप में प्रवेश हो करके संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। कैसी स्टेज में?
संपन्न।
हाथ पांव है लेकिन जैसे नहीं, कान है लेकिन कान होते हुए भी जैसे सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसे होता है ना, कोई ग्लानी करता है तो हम सहन नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाते इसका मतलब अभी निराकारी स्टेज धारण नहीं हुई। आंखों से कोई ऐसी बात देखते हैं कि हम सहन नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसा देख सकते, इसका मतलब अभी वो आंखें निराकारी स्टेज धारण करने वाली नहीं हुई। या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, कोई भी कर्मेंद्रिय अपना भोग भोग रही है और भोग भोगते अगर वो प्रभावित हो जाए भोग से तो इसका मतलब वो अभी निराकारी नहीं बनी, असक्त होने लगे, मन को बुद्धि को डाउन करने लगे, तन को डाउन करने लगे तो इसका मतलब वो इंद्रिय अभी निराकारी स्टेज वाली नहीं हुई। इसलिए शिवलिंग को ना हाथ दिखाते हैं, ना पांव दिखाते हैं, ना आंख दिखाते हैं, कोई भी अंग नहीं दिखाते। क्या कर्मेंद्रिया जैसे है ही नहीं। तो शिवलिंग की पूजा निराकार की यादगार है, उसका आकार नहीं है। वो शिवलिंग छोटे से छोटा बना दो और बड़े से बड़ा बना दो। छोटा बनाओ तो इतना छोटा बनाओ जैसे बिंदी रखते हैं कागज पर, तो उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो वो बिंदु है, बिंदु गुणों में सिंदूर, लेकिन देवताओं जैसे गुण नहीं है उसमें। क्या 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनता। अगर वो 16 कला संपूर्ण देवता बन जाए तो आज जो असुर कलाहीन होकर के पाठ बजा रहे हैं, संसार का ध्वंस कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनको नाश कौन करेगा? संपूर्ण अहिंसक बन जाए, देवताएं तो संपूर्ण अहिंसक होते हैं ना, अगर भगवान भी संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो ये जो दुनिया में हिंसा फैली हुई है ये हिंसा करने वालों का नाश कौन करेगा? कोई रह जाएगा फिर? नहीं। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो भगवान तो इतना विषैला बनकर के सृष्टि पर आता है कि सारी दुनिया की विषय वासना को पी जाता है। उससे ज्यादा विषैला भी कोई नहीं है और उससे ज्यादा अमृतमय भी कोई नहीं है। वो असुरों का भी असुर बनकर के आता है और देवताओं का भी देवता महादेव बनकर के आता है। इसलिए मुरली में बोला है, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। मैं हूं माने कौन है?
शिव
सुप्रीम सोल है। शंकर की आत्मा या राम की आत्मा वो थोड़ी महादेव बन सकती है? अगर बनी होती तो 63 जन्म में पहले ही बन जाती। बनी कभी क्या? नहीं। ब्रह्मा के अंदर भी जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया मां के रूप में, वो किसने बजाया? सुप्रीम सोल शिव ने बजाया। ऐसे ही राम के अंदर, संगमयुगी अंतिम चोले के अंदर या शंकर के अंदर जो महादेव का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो सुप्रीम सोल शिव है, कोई दूसरी आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं है। तो तुम भी परम धाम में रहने वाली आत्मा हो, परंतु सब आत्माओं का बाप भी वो निराकार है, उनको सुप्रीम बाबा कहते हैं, पूजा भी उनकी करते हैं। अगर और निराकारियों की पूजा होती है वो भी उनके बच्चे क्या? जिन शालिग्रामों की पूजा होती है, रुद्रयज्ञ रचते हैं, लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, तो किसकी पूजा है? जो ऐसा रूप धारण करते हैं, शिव स्वरूप बनते हैं, उनकी पूजा है, उनकी यादगार है। मिट्टी के शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, वो सब है मेटेरियल, मेटेरियल यज्ञ रचते हैं। तुम कोई मेटेरियल यज्ञ नहीं रचते हो, वो तो भक्ति मार्ग में यादगार बनाई हुई है। क्या कि लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं, एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, तुम्हारी मेटेरियल की कोई बात नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल में क्या बन जाते हो, शालिग्राम बन जाते हो, निराकारी स्थिति धारण करने वाले बन जाते हो, 9 लाख सितारों की निराकारी स्टेज बनी हुई होगी जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, वो निराकारी स्टेज सारे संसार में बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बाप लोगों को ऐसे समझ में आएगा जैसे सर्वव्यापी हो गया, उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, वो उनकी याद में समाई हुई है, वो याद की शक्ति के कारण ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो उनका वह मेटेरियल यज्ञ, मिट्टी से मूर्ति बनाए उनकी पूजा करते हैं, यहां तो ये शरीर क्या है, मिट्टी है, इस शरीर से हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। कैसा पुरुषार्थ? निसंकल्पी स्टेज का पुरुषार्थ है, निसंकल्पी स्टेज बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम जड़ चित्र आदि की पूजा नहीं करते हो, कोई जड़ चित्र की पूजा नहीं करते हो क्या? हमें भगवान भी मिला है तो कैसा मिला है? चैतन्य मिला है। जब हमें चैतन्य मिला तो हम जड़ को क्यों माने? ऐसे तो सन्यासी भी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं क्या? किसके आगे माथा टेकते हैं? लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, कृष्ण के आगे माथा नहीं टेकेंगे, और देवताओं के आगे माथा नहीं टेकेंगे, किसके सामने टेकते हैं? लक्ष्मी नारायण के सामने माथा टेकते हैं। इसलिए मुरली में बोला है कि सबसे कुछ अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। दरवाजे दरवाजे पे भीख भी मांगने जाएंगे तो बोलेंगे ओम नमो नारायण, नारायण को याद करें, मैंने तुम्हारे दरवाजे पर नारायण आया हुआ। नर जो साधारण वेश में होता है वो दरवाजे दरवाजे चक्कर काट रहा है, मना वो तो अपने को शिव ओम कह देते, नारायण कह देते, नारायण की कोई ग्लानी शास्त्रों में नहीं है, तो वो भी नारायण को माथा टेकते, गंगा स्नान करते हैं। तो ये सब है मेटेरियल, तुम्हारा कोई मेटेरियल नहीं है, तुम तो चैतन्य को मानने वाले। ओम शांति।